हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 6 और 7। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुपुत्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूण द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादय, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय तत्थाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 6। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकले हुए इन अमृतमय शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वे बता रहे हैं, एवं सचित्ति स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। अनुवाद, मनुष्य को इस प्रकार स्थित होकर उनकी यानी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम हैं। अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में पुष्टि की गई है कि क्या बताया गया है 18.61 में, भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस तरह 18.61 में पुष्टि की गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, सब जीवों के हृदय में है, अतएव जो योगी हैं वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं है अपितु एक तथ्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमारी आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं, आत्मा का काम ही सेवा करना है। तो जीवित प्राणी जब तक जीवित रहता है तब तक वो किसी न किसी की सेवा करेगा, या तो वो अपने मालिक की सेवा करेगा, या अपनी पत्नी की करेगा, अपने बच्चों की करेगा, या अपने पति की करेगा, या तो फिर अपने शरीर की सेवा करेगा। चाहे बड़े से बड़ा राजा ही क्यों न हो, उसे भी प्रजा की सेवा करनी पड़ती है। तो यही जीव का स्वभाव है, जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करनी है। किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव ब्रह्म की ही सेवा करने में सोचता रहता है, मुझे इन भौतिक वस्तुओं की सेवा करनी चाहिए, उसका सेवा का स्वभाव है। तो क्योंकि माया का प्रभाव इतना है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, अज्ञानता के कारण वो भौतिक वस्तुओं की सेवा करने में ही आनंद मानता है। बदजीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसा कि पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधियों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने आप को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामिक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही एक ब्रह्म है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ने लगते हैं, यद्यपि वहां पानी का नाम मात्र भी नहीं होता, लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पानी जैसी चीज होती ही नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं, अतएव मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, ना कि रेगिस्तान में। हमसे प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन या नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है। हर कोई चाहता है ना कि ऐसा सुख प्राप्त हो जो नित्य हो, ऐसा जीवन प्राप्त हो जो नित्य हो, ऐसा आनंदमय जीवन हो जिसमें कोई कष्ट न हो, हर कोई चाहता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को ब्रह्म में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक टिकता नहीं है और इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञान नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर हमें बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हर कोई सेवा तो करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि किसकी सेवा करके मुझे नित्य आनंद प्राप्त हो। तो ये ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के पीछे लगे होते हैं। लेकिन इस श्लोक में बताया जाता है कि अगर भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के पीछे लगे रहोगे तो पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के क्लेश झेलने पड़ेंगे। तो आखिर किसकी सेवा करके हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से छूट सकते हैं? तो ये बता रहे हैं, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत। इसके विषय में श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18.65 में बताया गया है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता 18.61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त होती माता भी बालक से आसक्ति होती है। किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह क्रमशः माता से विलग हो जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक उसकी कुछ न कुछ सेवा करे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भगवान के वात्सल्य को बता रहे हैं कि भगवान प्रत्येक जीव की हर परिस्थिति में उसके साथ ही रहते हैं। भगवान उससे कभी दूर नहीं जाते, उनके हृदय में रहते हैं। जिस तरह से एक माता की इच्छा यही होती है कि वो अपने बालक को कभी भी अकेला ना छोड़े, सदैव उसके साथ रहे, उसी तरह भगवान का भी अपने समस्त अंश स्वरूप जीवों के साथ सुहृद और वात्सल्य भाव है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वह स्वयं भी उस बालक के प्रति समान रूप से वात्सल्य रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वात्सल्य रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस आ जाएं। किंतु हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही अंतिम सत्य हैं। वास्तव में हम उनके लिए वैसे ही लालायित रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में विद्यमान हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों में, गिरजाघरों में या मस्जिदों में ना जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र हैं। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती है, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भले ही भगवान हमारे हृदय में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस घर पे बैठ के हृदय में बैठे हुए भगवान का ध्यान करें। नहीं, मंदिरों में जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में जब एक्टिविटीज होती हैं तो सब लोगों को उसमें आने का, भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। सारे लोग वहाँ पर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। इससे क्या होता है, सबका कल्याण होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती। अब मंदिर में कभी कोई प्रोग्राम होगा नहीं, कोई क्लास होगी नहीं, तो लोग क्यों आएंगे? तो इससे क्या होगा, सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है, फिर भगवान की ओर आसक्ति भी समाप्त हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी हो जाती है, फिर बस केवल इंद्र तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य हो जाती है, जिससे बहुत ही सब समस्याएं शुरू हो जाती है और लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकतावादी के पैटेंट ट्रेंड मार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो भगवान को निकाल देते हैं जीवन से और अपनी योजनाएं बनाते हैं कि मनुष्यों के जीवन में किस प्रकार से शांति और समृद्धि लाई जाए। श्री रूपा जी बता रहे हैं, चूंकि ऐसे प्रयास ब्राह्मिक होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। जब तक जीव भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ लेता, चाहे भौतिक वस्तुएं कितनी भी इकट्ठी कर लें, लेकिन आनंद संभव नहीं है, तो भले बड़े बड़े नेता आ जाएं संसार में और वो बड़ी बड़ी योजना बनाएं, लेकिन वो अक्षम रहेंगे। क्योंकि यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस संगति को दूर करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना होगा। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यदि संसार में बहुत ज्यादा एडवांस अगर है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी या बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, बहुत सारी इन्वेंशंस हो जाएंगी, तब संसार में बहुत सुख हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये तो उन नेताओं ने, उन साइंटिस्ट ने अपनी बुद्धि से सोचा है कि यदि सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी तो जीवन आनंदित हो जाएगा। जीवन भले सरल हो सकता है, इन सुविधाओं से जीवन सरल हो सकता है, आसान हो सकता है, परंतु आनंदित नहीं हो सकता है। हमें सरल जीवन नहीं, आनंदित जीवन की खोज है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि वास्तव में जीव आनंदित होना चाहता है तो श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें भौतिक लाभ की कोई आकर्षण नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ हमने देखा कि पहले श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विरक्त व्यक्ति है उसके विषय में बताया कि विरक्त व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि उसके पास जमीन है तो जमीन पे सो जाना चाहिए, तकिए की जरूरत नहीं है, और यदि उसको है ना कुछ खाने की जरूरत है, भूख लग रही है, तो फिर वो क्या करे, फल खा ले, अगर कपड़े पहनने हैं तो फिर चिथड़े उठाकर पहन ले। इन सब चीजों के लिए ज्यादा अपने जीवन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन इन भौतिक वस्तुओं को कमाने के लिए और इन्हीं के पीछे इन भौतिक वस्तुओं को भोग भोग कर मरने के लिए नहीं मिला है। जीवन में कम से कम संग्रह करना चाहिए। अब गृहस्थ हैं तो जाहिर है गृहस्थ और सन्यासी में थोड़ा तो फर्क होता है। गृहस्थ को संग्रह तो करना होता है, मगर इतना नहीं कि इसी में सारा का सारा जीवन व्यतीत हो जाए। जीवन में कुछ और इम्पोर्टेंट है, उसके लिए समय निकालना चाहिए। तो कस्मात भजंती कवयो, ये जो कवि लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, धन दुर्मदांधा, जो धन के पीछे अंधे हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। ये सब विद्वानों को ये नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, है ना, जो वास्तव में अपने जीवन का कल्याण करना चाहते तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी आज के श्लोक में बता रहे हैं, एवं सचित्ते स्वत एव सिद्ध स्वचित्ते, जो आपके अपने हृदय में स्वत एव स्वयं से ही सिद्ध, यानी निश्चित रूप से पूरी तरह से प्रस्तुत है। आपको क्या करना है, बस सिर्फ उसको उसकी ओर आकर्षित होना है। किसकी ओर, एवं सचित्ते स्वत एव सिद्ध, वो भगवान जो स्वयं ही सबके हृदय में विद्यमान है। आपको सिर्फ उस भगवान की ओर अपना आकर्षण केंद्रित करना है। भगवान कहते हैं 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। अब भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः ही आपके हृदय में है, वो अपने आप ही हृदय में आकर विराजमान हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे हमारे घर में किसी मेहमान को बुलाना होता है फिर क्या करते हैं, आज ये आने वाला है ना, जल्दी जल्दी घर साफ करो, जल्दी जल्दी जगह बनाओ, उसके लिए व्यंजन बनाओ, कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा मैं तो पहले से बैठ गया, मुझे पता है कि तुम मेरा स्वागत करने के लिए उचित वस्तु और सामग्री नहीं इकट्ठा कर पाओगे, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही आके बैठ जाता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे हृदय में नहीं होऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। केवल भौतिक इंद्र तृप्ति में ही तुम आनंदित रहते रहोगे। तो मैं स्वयं ही आके तुम्हारे हृदय में बैठ गया हूँ। अभी तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही आप ही हमारे हृदय में आकर बैठ गए। कहाँ पर बैठ गए? एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध। स्वचित्ते संसार में देखा गया है कि जब मनुष्य तकलीफ में होता है तो भले ही कोई उसके कितने ही सुहृद हो जो उसको बचाना भी चाहते हो, लेकिन जैसे पति है वो सदैव चाहता है कि अपनी पत्नी को प्रोटेक्शन दे, माँ बाप हैं वो सदैव चाहते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन हमेशा क्या होता है, हम उस समय जब उसको तकलीफ होती है, जब उसको कोई कष्ट होता है, अगर हम उससे दूर हैं तो फिर हम उसकी सहायता के लिए पहुंच नहीं सकते। आजकल देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग कंट्रीज में स्टडी के लिए भेज देते हैं और अचानक से पिता को या माता जी को हार्ट अटैक होता है तो बच्चा चाहते हुए भी उसके पास उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको है ना प्रेम करने के लिए, उसको केयर करने के लिए आ नहीं सकता क्योंकि वो इतना दूर होता है। और इधर माता पिता दम तोड़ देते हैं लेकिन उनको देख भी नहीं पाते हैं। तो लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जब हमें कष्ट पहुंचता है ना तो भगवान को बुलाने की थोड़ी ना जरूरत पड़ती है। भगवान तो पहले से ही हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। एवं सचित्ते स्वतः एव सिद्धे, हमने नहीं बिठाया, भगवान सदैव स्वतः ही आकर आपके हृदय में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि सुहृद है। भगवान बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि माता जब छोटा बच्चा होता है ना, माता उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती। थोड़ी देर के लिए भी अगर किधर वो उतर रहा होता है ना, जैसे उनकी जो देवड़ी होती है उससे उतर रहा होता है, माता कंटिन्यूस उसकी माता की दृष्टि उसके ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे को उतरना नहीं आता, वो गिर जाएगा, उसको कष्ट होगा। तो कंटिन्यूस माता भले कोई भी कार्य करती है तो उसका पूरा ध्यान जो होता है अपने बच्चे पर होता है ना। उसी तरह से भगवान जानते हैं कि जो संसार है वो कितना दुखालय है। पदम पदम यद विपता सर्वत्र दुखम पश्यत, हर एक कदम पे विपता है, दुख है, तो मेरा बच्चा वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए भगवान सदैव उस बच्चे के साथ रहते हैं। वो कभी भी हमारा साथ, चाहे हम किसी योनि में भी चले जाएं, मनुष्य ना बनकर कुत्ते बन जाएं, गटर के कीड़े बन जाएं, सुअर बन जाएं, भगवान कभी भी हमसे अपना संबंध नहीं तोड़ता। भगवान कभी भी नहीं बोलता कि ये तो कुत्ता है, मैं इसके दिल में थोड़ी ना रहूंगा, मैं त्रिलोकी का नाथ हूँ, नहीं। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धे। तो जो भगवान आपसे इतना प्रेम करता है उसकी ओर आकर्षित होना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत। भगवान वो जो षडेश्वरीय युक्त हैं, उस भगवान के अंदर वो सारे गुण हैं जो प्रेम करने के लिए आत्मा के लिए आवश्यक हैं। आत्मा जिस प्रकार का आकर्षण प्राप्त करना चाहती है वो सारे गुण भगवान अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत दयालु हैं, परम ज्ञानी हैं, परम धनी हैं, परम कृपालु हैं। भगवान से अतिरिक्त और कोई भी प्रेम करने के योग्य नहीं। इसलिए बोला आत्मा, वो आत्मा है और हम भी आत्मा है, यानी वो परमात्मा है और हम आत्मा है। तो आत्मा को केवल प्रेम करना आता है और वास्तव में प्रियार्थो, अर्थ कहते हैं सत्य, वास्तव में उसका वास्तविक अर्थ रियल जो प्रेमी है वो भगवान ही है। तो वो उसी भगवान को प्रेम करके ही आनंदित हो सकती है। प्रिय, अत्यंत प्रिय है वो, सबका प्रिय है, सबका सुहृत है। और आत्मा का कर्तव्य केवल भगवान को, जो कि अनंत है, अनंत भगवान का ही भजन करना चाहिए। हम देखते हैं भौतिक जगत में कोई भी अनंत नहीं है। थोड़े बहुत गुण तो सबके अंदर हैं,
कुछ सुंदरता, कुछ ऐश्वर्य, कुछ ज्ञान, कुछ धन, कुछ बल, लेकिन भगवान के अंदर अनंत गुण है। वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा कृपालु है, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, अनंत है। भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। शास्त्र लिख लिख कर थक जाते हैं और अंत में नैति नैति पुकारते हैं। शेषनाग अपने हजार मुखों से भगवान के गुणों की व्याख्या करते 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 अंत में कहते हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। इतने अनंत गुण वाले जो भगवान हैं, केवल उन्हीं का भजन। वे कहते तम निवृतो नियतार्थो भजेत नियतार्थो। वो भगवान अपने नियत मतलब स्थाई शाश्वत, वो सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो अर्थ, वो लाभ जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो अपने जीवन में नियत अर्थ होना चाहिए। हमें पता है उसी का भजन करके, उसी भगवान की भक्ति करके ही, जैसे नियत अर्थो भजेत, हमें ये निश्चित होना चाहिए अपने जीवन में। एक विद्वान व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये निश्चित करना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करनी है, करनी है, करनी है, इसी से मेरा कल्याण होगा, इसी से। तम निवृत्तो, निवृत्तो का मतलब है संसार से विरक्त हो जाएंगे। फिर जब एक बार भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, जब हमें ये पता चल जाएगा कि जीवन में केवल ये भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना ही हमें आनंदित नहीं कर सकता है, भले ही भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने करके करके हम सोचते हैं कि हम आनंदित हो जाएंगे, लेकिन कभी भी कोई तो ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने धन प्राप्त करके आनंद प्राप्त किया हो। हमारी अपनी प्रैक्टिकल हम देखते हैं, कोई तो ऐसा बता दो जिसने बड़ा घर ले लिया हो, बड़ी गाड़ी ले ली हो, है ना, और भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर ले हो, और उसने ये स्टेटमेंट दिया हो कि मैं सुखी हो गया हूँ। ऐसा होता ही नहीं है। फिर भी सारे लोग क्या करते हैं, वो उसी की तरह धन प्राप्त करके या भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके आनंदित होना चाहते हैं। जिस प्रकार एक पशु होता है, वो पशु होते ना, वो एक दूसरे के साथ पीछे पीछे जाते हैं। वो सोचते हैं हम लोग खा रहे हैं, हमें खिलाया जा रहा है, ये सब वस्तुएं दी जा रही हैं और हम आनंदित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता अगले ही क्षण में क्या होगा, उसकी गर्दन कटेगी। उसकी गर्दन कटती है, उसको देख के भी दूसरे जो पशु होते हैं, बकरियां जो होती है कसाई घर में, दूसरों को ये अनुभव नहीं होता है। वो बोलते हम तो आसानी से आराम से चने खा रहे हैं, घास खाने को मिल रही। तो इसी तरह से ये जो बेवकूफ होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो क्या जानते हैं कि परम सुख किस में है। वो भगवान जो आपके हृदय में रहता है, वो भगवान जो सबका हित करता है, वो भगवान जो परम प्रिय है, जिसके अनंत गुण है, असीम है। तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत, जो वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं वो उसी भगवान का भजन करते हैं। और इस भगवान के भजन करने से क्या लाभ होता है, संसार हेतु परमश्च यत्र। संसार हेतु परमश्च, संसार हेतु का मतलब होता है संसार की बद्ध अवस्था का कारण, जो जिस कारण से हम इस भौतिक जगत में बंध गए हैं, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्टों को भोग रहे हैं, वो हेतु जो है, वो जो कारण है परम, वो समाप्त हो जाए। उपरम का मतलब होता है संसार हेतु उपरमश्च यत्र। ये जो कृष्ण का भजन करने से वो संसार में आकर कष्ट भोगने का कारण समाप्त हो जाएगा, और संसार में बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसने का और कष्ट में पड़ने का क्या कारण है, वो कारण है अविद्या, अज्ञान है। वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। जब कोई कृष्ण का भजन करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, तो फिर क्या होता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि हर दुख का कारण ही अज्ञान है। और वो अज्ञान क्या है कि हम भौतिक वस्तुओं को अपना मानते हैं, इस शरीर से, शरीर को मैं मानते हैं और समझते हैं कि इस भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके ही आनंद प्राप्त होगा। और जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो क्या होता है, हृदय की गंदगी समाप्त हो जाती है। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ज्ञान वैराग्य ये स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य होता है और ज्ञान उत्पन्न होता है कि इन भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से मुझे आनंद नहीं आएगा, ये स्वतः होने वाला है। हमें क्या करना है, तम निवृतो नियतार्थो वज, हमारा वास्तविक लाभ इसी से होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। बस भक्ति में, और भक्ति में क्या करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है, अधिक से अधिक भागवत श्रवण करना है, ताकि हमारा प्रेम जो है वो भगवान के प्रति बढ़े। क्योंकि भागवतम श्रवण करने से क्या होता है, हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उछल, प्रेम जो है वो तरंगे मारने लगता है। जब हम भागवतम को श्रवण करते हैं, ये हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम उनके मुखारविंद के, उनके शब्दों में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम की रचना नहीं की होती, इस तरह से एक एक श्लोक को इस तरह से अच्छे से हमें बताया नहीं होता, तो हम कभी भी श्रीमद् भागवतम के इस रहस्य को नहीं समझ सकते थे। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जीवन का, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भागवतम को श्रवण करना चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें भागवतम श्रवण करने के लिए न मिले। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भौतिक कार्यों के कारण हमारा नाम जप न हो। एक दिन भी हमें अपनी साधना को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि बाकी सब यही रह जाएगा, मेरा साथ तो मेरा कृष्ण देगा, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के लिए समय व्यतीत करना है। तो यदि हम भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। और जब भगवान का भजन करने से ही जीव का कल्याण होगा, भगवान का भजन करने से ही जीव को आनंद आएगा, भगवान की भक्ति करने से ही हमारे जन्म मरण के चक्कर समाप्त होंगे, तो हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि ये संसार तो दुखालय है और संसार को वे कहते हैं वैतरण्याम। अगले श्लोक में कहते हैं कस्तम त्वनादित पुराणुचिंताम वृत्ते पशुना सतीम नाम कुरियात् पश्यंजनम पतितं वैतरण्याम स्वकर्मजान परितापांचुषाणा कस्तम त्वनादृत्य पुराणुचिंताम वृत्ते पशुना सतीम नाम कुरियात् पश्यन् जनम पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापांचुषाणाम् कस्तं त्वनादृत्य पुराणुचिंताम् वृत्ते पशुना सतीं नाम कुरियात् पश्यन् जनम पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापांजुषाणाम् कस्तम त्वनादृत्य पुराणुचिंताम्। कस्तम मतलब ऐसा कौन होगा तू लेखन अनादृत्य, जो उपेक्षा करके, किसकी उपेक्षा, परानुचिंतान, परा कहते हैं जो दिव्य होता है, उस यानी भगवान की, भगवान का चिंतन नहीं करेगा, ऐसा कौन होगा। वास्तव में जीव को हृदय मिला है चिंतन करने के लिए, और चिंतन करने के लिए भगवान ने किसको चिंतन करना है, एव स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध, वो स्वयं ही चित्त के अंदर बिठा दिया अपने आप को कि चिंतन यदि करना है तो केवल भगवान का करना है, ध्यान यदि करना है तो केवल उसी परानुचिंता, वो जो परम है, जो दिव्य है, उसी का ही चिंतन करना है। तो ऐसा कौन होगा कस्तम त्वनादृत्य, जो उसकी उपेक्षा करेगा, और वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वे कहते हैं ऋते पशुन सती नाम कुरियार, ऋते पशुन, वो पशुन है भौतिकतावादी, तो वो तो पशु की तरह है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि
असति। असति का मतलब होता है जो भौतिक वस्तुएं जो क्षण भंगुर में समाप्त हो जाने वाली हैं, केवल उनका ही चिंतन करेगा वो मनुष्य की कैटेगरी में तो शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पशु है। तो रिते पशु न सती नाम कुरियात, कुरियात मतलब स्वीकार करेगा। असति नाम कुरियात, जो असत हैं, जो क्षण भंगुर हैं, जिनके अंदर केवल नाम मात्र का सुख है, उन भौतिक वस्तुओं को तो स्वीकार करेगा, लेकिन जो वास्तविक आनंद है, जो दिव्य भगवान है, जिसका स्मरण करने से हमारे सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं, सारे दुख समाप्त हो सकते हैं, जन्म मरण का बंधन छूट सकता है, त्रयताप नाश हो सकते हैं, उनका चिंतन छोड़कर, उसकी उपेक्षा करके, अनादृतता मतलब उसकी उपेक्षा करके वो केवल क्षण भंगुर भौतिक वस्तुओं का आनंद लेने के विषय में सोचेगा वो तो पशु है, वो तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। और आगे कहते हैं पश्यन् जनम, निश्चित रूप से देखते हुए जनम दूसरे लोगों को, यानी कि वो देखेंगे कि जो सामान्य लोग हैं वो क्या करते हैं, पतितं वैतरण्यम्, कि दूसरे लोग किस तरह से इस जन्म मरण के वैतरणी नदी के अंदर गिर रहे हैं, तो उनको जब वो देखेगा, जब उसके अंदर बुद्धि होगी तो वो यही सोचेगा ना कि मैं इसमें ना गिरूं। इस संसार को वैतरणी, वै का मतलब होता है बहुत कठिन और तरणी का मतलब होता है पार करना, यानी वो जिसको पार करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, ये भौतिक जगत एक माया है भगवान की, और भगवान कहते बहुत ज्यादा कठिन है, वैतरणी नदी कहा गया है। और वैतरणी नदी वास्तव में नरक के चारों तरफ एक विशाल नदी है, यानी नरक में आने के लिए एक विशाल नदी को पार करके फिर नरक के अंदर आया जाता है, और चारों तरफ वो नदी है। पता नहीं कहां से इस नदी में असंख्य मात्र में, इतनी विशाल नदी है और इसमें असंख्य मात्र में मल मूत्र हड्डी रत पीप और कितनी गंदी गंदी चीजें भर दी गई हैं, केश और नाखून और पीप और इतना गंदा उसके अंदर, इतना गंदा मतलब नदी का मतलब ये नहीं पानी से भरी हुई नहीं है, केवल गंदगी से भरी हुई, इतनी गंदगी उसके अंदर, इतना मल है, इतना मूत्र है और सारा गंदा गंदा भरा, उससे इतनी दुर्गंध निकलती है, इतनी बदबू निकलती है कि पूरे नरक से, पूरा जो नरक है वो इस दुर्गंध से भर जाता है। तो यमराज का जो लोक है वो इस नदी, ये चारों ओर इस नदी से घिरा हुआ होता है। तो वास्तव में ये उन व्यक्तियों को जो अपराधी हैं, उनको अपराधियों को दंड देने के लिए तो नरक बनाया, तो वहां पर कोई खुशबू तो जाके छिड़केंगे नहीं, तो इतनी गंदी बदबू वाली ये नदी, इतना गंदा है और इसमें क्यों बनाया गया है, ये तो भगवान की व्यवस्था है उनको दंडित करने के लिए। और यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है पश्यन् जनम पतितं वैतरण्यम्, कि इसी प्रकार ये संसार में वैतरणी नदी है, इस वैतरणी नदी में जीव गिरा है, पतित हो गया है, किसी ने उसको जबरदस्ती नहीं गिराया है। कैसे गिरा, स्वकर्मजन, यानी अपने कर्मों से उत्पन्न, उसने क्यों कि भगवान का भजन नहीं किया, उसने क्यों कि अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अपना आकर्षण केंद्रित नहीं किया, क्योंकि भौतिक वस्तु और व्यक्तियों को प्राप्त करके उन्हीं के अंदर वो आनंदित होना चाहता था, इन कुकर्मों के कारण। स्वकर्मजान परितापांजुषाणम, परिताप मतलब बहुत ज्यादा ताप है यहाँ पर, परितापान यानी इतना ताप है, इतना दुख है कि आक्रांत होता है वो, मतलब अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, जन्म मरण के चक्कर में आकर बारंबार, कभी माता के गर्भ में आता है तो कभी मृत्यु होती है, ऐसा लगता है कि ये जीव जो है वो इतना दुखी है इस भौतिक जगत में, इतने कष्ट भोग रहा है। तो एक विवेकवान व्यक्ति जो इनको देखेगा कि जीव इतने ज्यादा कष्ट में है, इतने ज्यादा संताप में है, तो जो विवेकी होगा वो कैसे कष्टाम त्वनादृत्य पुरानुचिंतन, परानुचिंतन,
कि वो फिर जो विवेकी होगा वो परक अचिंतन कैसे नहीं करेगा, भगवान का चिंतन छोड़ के वो रिते पशु नाम असती नाम कुरियन ये इन केवल भौतिक वस्तुओं के लिए कैसे चिंतन करेगा और कुछ के लिए कैसे सोचेगा। एक जो वास्तव में बुद्धिमान है उसको ये दिखेगा ना कि ये तो भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं केवल हमारे दुखों का कारण बनती हैं, तो इनको त्याग के वो भगवान का भजन क्यों नहीं शुरू करेगा। अगर वो नहीं शुरू करता है भगवान का भजन, अगर वो फिर भी इन भौतिक वस्तुओं के अंदर ही आनंद ढूंढता है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता है। तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की चिंता करनी, संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य संसार की चिंता नहीं करता, भगवान ने तो स्टार्ट में ही कह दिया अशोचानन अशोचस्वम प्रज्ञा वादांश बासते गतासु ना गतासुश नानु शोचंती पंडिता। बातें पंडितों जैसी कर रहे हो। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्ञानियों की तरह बात करते हैं, लेकिन किसकी करेंगे, या तो शरीर से करेंगे या तो शरीर से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं की करेंगे। तो भगवान ने तो पहले बोल दिया बेवकूफ है वो, बातें पंडितों की तरह करते हैं लेकिन वास्तव में जो बुद्धिमान होता है वो इन चीजों के लिए एक बात नहीं करता। वो किसके लिए बात करता है, भगवान कहते हैं वो केवल मेरे विषय में बात करता है। भगवान कहते हैं कि इस संसार की वस्तुएं तो दुखों का कारण है, यही संस्पर्श जाप होगा दुख एवते आर्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो इनके अंदर आनंद नहीं ढूंढते हैं, वो तो आध्यात्मिक आनंद की खोज करते हैं जहां पर पहुंचने के बाद कभी भी पदम पदम विपताम न तेषाम, जहां पर कदम कदम पर दुख नहीं है, कदम कदम पर तकलीफ नहीं है, ऐसे दिव्य धाम को जाने के लिए वो सोचते हैं। तो वास्तव में यहां पर बताया जा रहा है कि हम सब मूर्ख हैं जो भगवान को छोड़कर किसी और विषय में सोच रहे हैं, किसी और वस्तु का चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में ये भौतिक वस्तुएं जो हैं वो ही हमारे दुख का कारण है। ये घर परिवार, ये वस्तुएं, ये सब चीजें हमको बहुत कष्ट होता है और अंतिम समय में उनका ही चिंतन बना रहता है। इसलिए चिंतन यदि करना है तो केवल भगवान का ही करना चाहिए। लेकिन संसार में अजीब दशा है कि इतना दुख है, इतना कष्ट है, फिर भी सब लोग इसी संसार के विषय में सोचते हैं, भगवान के विषय में कोई नहीं सोचता। जैसे हमने पहले बोला, जैसे पशु घर में कसाई जो होता है एक बकरी को काटता है और दूसरा बकरा जो होता है वो आराम से बैठकर खा रहा है, आनंद कर रहा है। इसी प्रकार सूत गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर सूत गोस्वामी हमें जीवन के परम रहस्य को बता रहे हैं कि जीव का वास्तविक रहस्य क्या है। बहुत जरूरी है कि जीव अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़े। भगवान का चिंतन बहुत आवश्यक है, भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है। जो धन दौलत और सुविधाएं वो जो हमारे जीवन में लिखी हुई हैं, जो आनंद हमारे जीवन में है, जो भौतिक वस्तुएं हमें हमारे भाग्य में है, वो तो मिल ही जाएंगी, अवश्य आएंगी। इस जन्म में यदि हमको ये भौतिक वस्तुएं मिल रही हैं, तो इसका कारण क्या है कि पिछले जन्म में हमने भक्ति की थी। अगर भौतिक वस्तुएं भी प्राप्त करनी है ना, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर इस जन्म में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं 6.41 में, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वाम शाश्वती क्षमा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। अगर आप भक्ति करोगे भगवान की और पूर्ण भक्ति करके भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, फिर भी इस संसार में ऐसी जगह पे आपको जन्म मिलेगा जहाँ पर भौतिक वस्तुओं के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जो मिलना है वो पिछले दफा जो आपने किया है उसके अनुसार मिलना, और कल जो मिलेगा दूसरे जन्म में आज आपकी भक्ति पर डिपेंड करता। तो जो कुछ मिलना है वो भगवान के द्वारा ही मिलना है, इसलिए भगवान की भक्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चिंता करनी है तो केवल इतनी करनी चाहिए कि नाम जब कभी नहीं छूटना चाहिए। चिंता करनी है तो केवल इतनी ही करनी चाहिए कि कभी भगवान से दूर ना हो जाए, मर जाना चाहिए उस व्यक्ति को जो भगवान की भक्ति नहीं करता, क्योंकि उसका जीना फिजूल है, जितने दिन जिएगा धरती के ऊपर बोझ रहेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगति प्राप्त हो जो हमें भगवान की ओर आकर्षित करें। भौतिक वस्तुओं से हमारा आकर्षण समाप्त करके कृष्ण की ओर हमारा आकर्षण लगाने में हमारी सहायता करें। इसे भौतिक वस्तुओं की संगति, भौतिक व्यक्तियों की संगति भी नहीं करनी चाहिए, जो केवल हमें भौतिक संसार में आनंद कैसे मिले उसके विषय में बताएं। क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी हम पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शास्त्र हमेशा कहता है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लफ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ी देर के लिए भी हमें किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अनुवाद देखिए, निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देख कर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करेगा और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा है। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी ये नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग हमेशा ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते कहते हैं करते रहते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता 7.20 में भगवान ने कहा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वही देवताओं की शरण लेता है। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जबकि मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है तब तक वह उन देवताओं की किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है जो अंततोगत्वा भ्रामिक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध आध्यात्मवादी किसी कभी ऐसी भ्रामिक वस्तुओं से मोहित नहीं होता, अतएव वह सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। ये अवस्थाएं हैं ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। पिछले श्लोक में यह सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक पग आगे है। जिस प्रकार कि भगवान के विराट रूप में के विषय में सुझाया गया था, बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दिशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के ग्रह के द्वार पर वैतरणी नाम की निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। उनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। उनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस होते हैं। किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते रहते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को वे स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जीव जो भी सुख और दुख प्राप्त करता है अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है, लेकिन भक्ति जो है वो जीव किसी भी अवस्था में कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.31 में, अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भले आज तक आपने बहुत सारे अपराध किए हो, दुराचारियों में सर्वोपरि आपका नाम आता हो, लेकिन आपको भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। भगवान का नाम स्मरण करने के लिए किसी को भी रोका नहीं जाता है। तो हम आज से ही ये सोच लें कि अब इस वैतरणी नदी से हमें नहीं गुजरना है, क्योंकि एक बार जो भगवान की शरण में आ जाता है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना शुरू करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र में बहुत पावर है। हमारे सारे अपराध उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब हम इस महामंत्र के विषय में कि जप करने के विषय में सोचते हैं। तो जरा सोचिए, जो महामंत्र को जप करता होगा और सिंसियरली भगवान से ये प्रार्थना करता होगा कि हम आपके पास आना चाहते हैं, अब इस वैतरणी नदी से जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, तो उसको भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे। ये भगवान जो है वो बहुत ज्यादा करुणामयी है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने अंतिम लाइन में बताया है, जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो उसे कभी भी नरक में गिरने नहीं देते, ऐसे जीवों को स्वयं अपने धाम में वापस ले आते हैं। इसलिए वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भौतिक वस्तुओं के आकर्षण को समाप्त कर दे, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इतनी ज्यादा चेष्टा ना करे, बल्कि अपने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सीरियस हो जाए। ये सोच रहे हर वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर आज का दिन आखिरी हुआ तो मैंने तो अपनी साधना भी पूरी नहीं की, मैंने तो अपना जप भी कंप्लीट नहीं किया, आज अगर मैं भगवान के पास चला गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे। तो ये सोचना चाहिए, सुबह उठते ही ये सोचना चाहिए कि अगर आज का दिन आखिरी होगा तो फिर अगर ऐसा हो कभी हमें पता चल जाए कि आज का दिन आखिरी है तो कितना भी हम सीरियस होके जप करेंगे, कितना सीरियस होके भगवान के प्रति अपना आकर्षण निर्माण करेंगे। तो हर रोज आखिरी दिन हो सकता है, यदि ऐसा सोच जाए ना बंदा तो फिर बहुत ही तीव्रता से हम अपने हृदय से भौतिक आसक्ति को समाप्त करके भगवान के चरणों में अपनी आसक्ति को जमा सकते हैं और इसी से हमारा कल्याण होगा, क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमें कभी भी आनंद नहीं दे सकती हैं। आनंद तो केवल भगवान के नाम में है, भगवान की भक्ति में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहेगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।